हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। 389 सुनैना ने वहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को बैठे हुए देखा और उन्हें देखकर वो बहुत ही ज़्यादा हैरान परेशान हो गई, क्योंकि वहाँ पर आदित्य के रिश्तेदारों के साथ स्वीटी के मम्मी पापा यानी कि आदित्य के चाचा चाची, बुआ और इसके अलावा सुनैना के मम्मी पापा भी बैठे हुए थे, और उनके बीच अरुण भी बहुत चुपचाप वहाँ पर ही बैठा हुआ है और सुनैना की बुआ भी वहाँ पर ही हैं। शाम के इस वक्त उन सारे लोगों के वहाँ पर होने की सुनैना को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, इसलिए उन सबको वहाँ पर देखकर उसने तुरंत ही अपने पापा की तरफ देखते हुए वो ये सवाल किया, आप सब यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्यों आए हैं आज आप सब यहाँ? सुनैना ने ये सवाल इसलिए किया क्योंकि उसकी शादी के इतने दिनों में आज तक उसकी खैर खबर लेने नहीं आए। उसे इस बारे में नहीं पता कि जब वो हॉस्पिटल में एडमिट थी उस टाइम पर वो लोग वहाँ पर आए थे और नैना ने उल्टा सीधा सुनाकर उन्हें वहाँ से वापस भगा दिया था, लेकिन सुनैना को उस बात से भी इतना फ़र्क नहीं पड़ता। उसने अभी तक अपने घर वालों को माफ़ नहीं किया है। इसके अलावा शादी के बाद से आदित्य के घर वालों के बारे में जानने के बाद से वो उन्हें भी कुछ खास पसंद नहीं करती है। सुनैना की बात सुनकर उसकी सौतेली माँ उठकर उसकी तरफ आते हुए बोली, बेटा तुम तो हमें भूल ही गई। शादी के बाद बेटियाँ पराई हो जाती हैं, लेकिन इतनी भी पराई नहीं हो जाती कि अपने मायके के बारे में उसकी सौतेली माँ अपनी बात पूरी कर ही पाती कि उससे पहले, सुनैना ने हंसते हुए कहा, कौन सा मायका, कैसा मायका, मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं है, और जब वहाँ पर मेरी माँ ही नहीं है तो मायका कैसा? मायका तो माँ से ही होता है ना। वैसे आप दोनों को भी तो कभी याद नहीं आई बेटी की शादी करके, आप लोगों ने तो गंगा नहा लिया होगा ना, तो फिर क्यों आज क्यों अपनी शक्ल दिखाने यहाँ पर आए हैं? मुझे नहीं बात करनी और न ही किसी से मिलना है। ये सब बोलते हुए सुनैना की हंसी अब तक गुस्से में बदल गई थी और एकदम से सीरियस होकर इतना बोलते हुए उन सबको वहाँ पर छोड़कर सीधा सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। सुनैना को ऐसे गुस्से में देखकर स्वीटी भागते हुए उसके पीछे आई और उसने कहा, भाभी भैया को फ़ोन करो ना, मैं भी कब से इन लोगों को यही समझा रही हूँ, लेकिन पता नहीं कौन सी पूजा क्या रखना है इन लोगों को आपकी शादी वाले दिन, और शायद उसी की बात करने के लिए आए हैं। स्वीटी की इस बात पर सुनैना पीछे मुड़कर तेज़ आवाज़ में बोली, नहीं, हमारी लाइफ का कोई भी डिसीजन ये लोग नहीं ले सकते। जो कुछ भी होगा मेरी और आदित्य की मर्जी से ही होगा, और हम दोनों अपनी किसी भी खुशी में इन लोगों को शामिल नहीं करना चाहते। अपनी बात पूरी करके सुनैना वहां से जाने वाली थी कि कुछ सोचते हुए रुक गई और उसने स्वीटी की तरफ देखकर ताना मारने वाले अंदाज में कहा, इन सबके जाने से पहले गीता दी से बोलकर खाना जरूर लगवा देना इन सबके लिए, बाकी मुझे नहीं बैठना यहाँ पर इन लोगों के बीच। सुनैना की ये बात सुनकर उन सबको बहुत ही ज्यादा बुरा लगा और चाचा जी ने उठकर खड़े होते हुए कहा, इस तरह से बात कर रही है ये लड़की हमारे साथ? क्या हम यहाँ पर खाना खाने आए हैं? सुनैना ने उनकी बात सुनी तो ज़रूर, लेकिन कोई भी जवाब नहीं दिया और वो ऊपर जाने ही वाली की तभी अरुण ने पीछे से उसे आवाज़ लगाई, दी आप ठीक तो है ना? अरुण की आवाज़ सुनकर सुनैना कुछ पल के लिए वहाँ पर रुक गई और अरुण वहाँ पर उसकी तरफ आगे आया तो सुनैना ने काफ़ी नाराज़गी से उसकी तरफ देखते हुए कहा, अरुण तूने ही इन लोगों को यहाँ का पता दिया होगा ना? सुनैना ने जैसे ही ये बात बोली अरुण ने अपना सिर नीचे झुका लिया और वो आगे कुछ भी नहीं बोला। तो फिर सुनैना ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अरुण मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी, क्यों बताया तूने इन लोगों को? तू जानता है ना ये सारे लोग हमारी खुशियों के दुश्मन हैं और इसीलिए ही आदित्य इन लोगों से दूर भागता रहता है। सही करता है वो, मुझे भी इन लोगों के पास नहीं रहना। और इतना बोलते हुए तेजी से सीढ़ियां चढ़ गईं। उसके पीछे वहां पर खड़े स्वीटी और अरुण सुनैना की कही बातों के बारे में सोचते हुए एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। सुनैना के इस तरह वहां से चले जाने पर आदित्य की बुआ ने आगे आते हुए सुनैना के माता पिता की तरफ देखकर मुंह बिचकाते हुए कहा, बड़ी बदतमीज लड़की है आपकी, हम में से किसी को नमस्ते तक नहीं किया, पैर छूकर आशीर्वाद देना तो दूर की बात है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि हमारे घर की बहू है। बुआ की बातें सुनकर आदित्य के चाचा बोले, दीदी वो हमें इतना कुछ सुनाकर चली गई है और आप फिर भी ऐसी उम्मीद रखती हैं कि वो आपके पैर छुएगी? आदित्य के चाचा और बुआ की ऐसी ताने भरी बातें सुनकर सुनैना के मम्मी पापा का सिर सिर झुकाया तो वो जवाब में कुछ भी नहीं बोल पाई, क्योंकि अपनी बेटी के ऐसे बर्ताव से वो दोनों भी काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। उन्हें समझ नहीं आया कि सुनैना ने उन सबके साथ उन लोगों को ये सब क्यों सुनाया, क्योंकि जो कुछ भी सुनैना के घर वालों ने सुनैना और नैना के साथ किया उसे वो लोग कभी गलत ही नहीं मानते थे और उन्हें लगता था वो काफ़ी अच्छा बर्ताव करते हैं अपने घर की बेटियों के साथ। अपने पापा और बुआ की ऐसी बातें सुनकर स्वीटी ने उन्हें टोकते हुए कहा, ऐसा तो कुछ भी नहीं कहा भाभी ने, बुआ जी आप उनके खिलाफ ऐसे उल्टा सीधा क्यों बोल रही हो? स्वीटी की बात सुनकर बुआ जी अपने मुँह पर हाथ रखते हुए बोली, हे राम और भेजो उसे ऐसी लड़की के साथ रहने के लिए, देखो ये स्वीटी भी उस लड़की की तरह बदतमीज हो गई है, रेणुका समझा ले अपनी लड़की को। ये बात बुआ जी ने स्वीटी की मम्मी की तरफ देखते हुए कहा तो स्वीटी की मम्मी ने अपनी जगह से उठकर उसकी तरफ आकर उसे डांटते हुए कहा, तुझे बिल्कुल भी तमीज़ नहीं रह गई है क्या बड़ों से बात करने की? बुआ जी से अभी माफ़ी मांगो स्वीटी। इतना बोलते हुए स्वीटी की मम्मी उठकर उसकी तरफ आई तो स्वीटी ने कहा, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि मैं किसी से माफी मांगू। एक तो आप लोग बिना बताए इस तरह पूरी बारात लेकर यहाँ पर आ गए हो और फिर एक्सपेक्ट करते हो कि आप लोगों की सच्चाई और जो कुछ भी लालच आप लोगों के मन में भरा है वो सब कुछ जानने के बाद भी सब आपसे अच्छी तरह बात करे। तो सॉरी मम्मी, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, प्लीज इस बात को समझ लीजिए। स्वीटी ये सब कुछ बोल ही रही थी कि तभी उसका भाई तेज आवाज में उसका नाम लेकर चिल्लाते हुए बोला, स्वीटी क्या हुआ विशाल भाई, सच सुनकर भड़क क्यों रहे हो? अच्छा तुम तो भड़कोगे ही, लालची लोगों में तुम्हारा नाम भी जो आता है, काम करना तो सीखा नहीं है, बस हमेशा आदित्य भाई के पैसों के पीछे लगे रहते हो। पापा भाई अभी भी वक्त है, छोड़ दो ये सब और अपनी कंपनी को बढ़ाने के बारे में सोचो, कुछ काम करो, स्वीटी ने अपने भाई को भी ताना मारते हुए कहा। तो ये सुनकर उसका भाई बहुत ही ज्यादा गुस्से में उसे चांटा मारने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी स्वीटी के पास ही खड़े अरुण ने उसके भाई का हाथ पकड़ लिया और कहा, अपनी बहन पर हाथ उठाते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? वैसे भी स्वीटी सच ही तो बोल रही है और तुम लोगों को देखकर तो यही लगता है। तू है कौन और तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे मेरा, विशाल सिंघानिया का हाथ पकड़ने की? इतना बोलते हुए विशाल ने उसे अपना हाथ छुड़वाया और गुस्से में घूर कर उसकी तरफ देखा। तभी अरुण के पापा उसके आगे आते हुए बोले, अरे बच्चा है वो, उसे माफ कर दो बेटा। और अरुण क्यों तुम उनके घर के मामले के बीच में बोल रहे हो, वो सब आपस में बात कर लेंगे ना, तुम चुप रहो, अरुण की मम्मी ने उसे डांट कर समझाते हुए कहा। अरुण ने भी घूर कर विशाल की तरफ देखा और कुछ भी नहीं बोला।
तभी चाची जी ने इस बार फिर से बीच में कहा, आपने तो अपने किसी भी बच्चों को तमीज नहीं सिखाई, पता नहीं कहाँ से हमने आदित्य की शादी आपकी बेटी के साथ करवा दी। चाची जी की बात सुनकर सुनैना के पापा ने बोला, क्या आपने करवाई है, बड़ी वो आपकी बात ही सुनता, उसने खुद ही हमारी सुनैना का हाथ मांगा था और हमारे पास मना करने का भी कोई ऑप्शन नहीं छोड़ा था, और आप लोग तो बस नाम के बराती की तरह ही वहां पर आए थे। सुनैना के पापा ने जानबूझकर उन्हें ये बात याद दिलाई, क्योंकि वो लोग कुछ ज्यादा ही बोल रहे थे जो कि अब उनसे भी सुना नहीं गया, और ये बात सुनकर वहां पर उन लोगों के बीच बहस होने लगी। और तभी दरवाजे की तरफ से एक एकदम सीरियस और भारी आवाज आई, क्या चल रहा है ये सब यहाँ पर? दरवाजे की तरफ से आती हुई आदित्य की एकदम सीरियस और गहरी आवाज सुनकर वो सभी एक पल के लिए जैसे सहम गए। उन लोगों को जैसे उस वक्त आदित्य के वहां पर होने की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, इसलिए वो सभी हड़बड़ा गए और ज्यादातर लोग तो अपनी जगह से उठकर खड़े भी हो गए और एक दूसरे का मुंह में देखने लगे। आदित्य बहुत ही स्ट्रांगली पूरे एटीट्यूड में चलते हुए उस तरफ आया और उन लोगों के एकदम सामने आकर अपने दोनों हाथ सामने की तरफ बांधता हुआ खड़ा हो गया, होते हुए बोला, ये सब क्या लगा रखा है, यहाँ पर मेरा घर है, कोई पागलखाना नहीं, सब इस तरह से क्यों चिल्ला रहे हैं, और पहले कोई मुझे ये बताएगा कि आप सब इतने सारे लोग यहाँ पर क्यों आए हुए हैं, वो भी मेरे बिना बुलाए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप लोगों को यहाँ का एड्रेस कैसे पता चला? इतना बोलते हुए उसने गुस्से में घूर कर चाचा और चाची की तरफ देखकर कहा, जरूर आपने ही इन सब लोगों को यहाँ का एड्रेस बताया होगा। क्यों बताया, मैंने मना किया था ना, मुझे नहीं रहना है आप लोगों के साथ, आप लोगों के बीच तो क्यों बार बार आकर मेरे सिर पर सवार हो जाते हैं, आप सब लोग अभी के अभी जाइए यहाँ से, आदित्य ने एकदम सीरियस आवाज में कहा। और तभी उसकी नज़र स्वीटी पर पड़ी तो वो थोड़ा सा नरमी से बोला, सॉरी स्वीटी, मैं तुम्हारे मम्मी पापा से ऐसे बात कर रहा हूँ। लेकिन इतना बोलते हुए आदित्य ने स्वीटी की तरफ देखकर धीमी आवाज़ में उससे माफ़ी मांगी, लेकिन तभी स्वीटी ने कहा, कोई बात नहीं भाई, आपको माफ़ी मांगने की या फिर बुरा फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ ये लोग ऐसा बिहेवियर ही डिज़र्व करते हैं, और मैं भी कब से यही पूछ रही हूँ कि ये लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो ये लोग पता नहीं क्या। स्वीटी अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले ही उसके माँ आगे आते हुए आदित्य की बहुत ही ज़्यादा चापलूसी करते हुए बोली, आदित्य बेटा ये किस तरह से बात कर रहे हो, हम तो तुम्हारी चाचा चाची है ना, हम सब तो तुम्हारी अपने जान पहचान वाले हैं और तुम्हारा भला ही चाहते हैं, अभी तुम्हारी बीवी भी हमें इतना कुछ सुना कर गई और अब तुम भी, ऐसा क्या बिगाड़ा है भला हम लोगों ने तुम्हारा? क्रमशः